हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवानी की बात सुनकर आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया, क्योंकि वो अलग ही चीज सोचता हुआ वहां कुर्सी पर बैठा था। और फिर शिवानी की बात का जवाब देता हुआ बोला, हाँ रवि, वो तो घर चला गया, और तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? उसे भी तो कॉल करके पूछ सकती हो ना, आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आदित्य ने एकदम सीधे ये बात कही तो शिवानी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो आदित्य के सामने इस तरह की बात नहीं करती, क्योंकि वो उसका बॉस है और शिवानी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो वो तुरंत ही इधर उधर देखते हुए बोली, नो नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदित्य को तो पहले ही उन दोनों के रिलेशन के बारे में पता है, क्योंकि रवि उससे कुछ भी नहीं छुपाता है। इसलिए शिवानी का ऐसा रिएक्शन देखकर आदित्य बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर उसने आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझ रहा था कि शिवानी उसकी ऐसी बातों से एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उनके बीच की सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए, इसलिए आदित्य ने भी बात का टॉपिक चेंज करते हुए काम की तरफ ध्यान दिया। ऑफिस में वहां पर काफी दिन का काम पेंडिंग हो गया था, इसलिए काम में आदित्य को टाइम का पता ही नहीं चला। कब शाम के 7 बज गए। जब आदित्य ने घड़ी में टाइम देखा तो वो एकदम से बोला, शिट, शाम हो गई और मैंने अब तक सुनैना से कॉल पर भी बात नहीं की। वो जरूर मुझसे नाराज हो गई होगी, इसीलिए उसने भी कॉल नहीं की। इतना बोलकर आदित्य ने अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने फोन वापस पॉकेट में रख लिया और अपने आप से बोला, नहीं, अब सीधा घर जाकर ही बात करूंगा। इतनी देर में कॉल करूंगा तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा, और वैसे भी मेरी बीवी ताने इतने अच्छे मारती है। इतना बोलते हुए आदित्य वहां से बाहर निकल गया, क्योंकि उसने अपना सारा काम ऑलमोस्ट खत्म ही कर लिया था और ऑफिस से भी छुट्टी का वक्त हो गया था, तो सारे लोग एक एक करके वापस जा रहे थे। आदित्य भी वहां से निकला और फिर अपनी दूसरी कार लेकर उसे घर वापस आने लगा। लेकिन रास्ते में उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ तो उसने ब्लूटूथ से कॉल रिसीव कर ली और वो नदीम का फोन था। उसने कॉल पर कहा, सर, वो जिस नंबर से आपको मैसेज आ रहे हैं वो इंटरनेशनल नंबर बता रहा है, और वो भी किसी लड़की के नाम पर नहीं है, किसी आदमी के नाम पर है। अच्छा, तो अब आदमियों को भी ऐसे शौक चढ़ने लगे हैं क्या? पता करो कौन आदमी है और कौन सी कंट्री में बैठकर भी वो सिर्फ मुझे याद कर रहा है। आदित्य ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और हंसते हुए बोला, क्योंकि उसने सोचा है कि इतने नंबर ब्लॉक करने से अच्छा है वो अब अपना नंबर ही चेंज कर देगा, और वो नंबर वो किसी को भी नहीं देगा, ऑफिस में भी किसी को नहीं। सबसे अब मेल पर ही काम की बात होगी और नंबर वो सिर्फ सुनैना और अपने लिए ही रखेगा। ओके सर, मैं पता करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतना ईजी नहीं है ट्रैक करना। शायद उसे पहले से ही इस बारे में पता होगा कि आप उसके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, और उसने पहले ही अपनी सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम किया हुआ है, और हो सकता है वो नाम भी फेक हो जिस नाम से वो सिम ली गई है। नदीम ने अपनी तरफ से पूरी बात आदित्य को एक्सप्लेन की, तो आदित्य इस तरह से कार ड्राइव करते हुए बोला, ठीक है, जो भी करना है करो और जल्दी से पता करो, बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना, कल तक सब कुछ पता चल जाना चाहिए। आदित्य ने इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर ऑर्डर देते हुए कहा, तो नदीम ने भी सिर्फ ओके सर बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, और आदित्य रास्ते में था तो उसने भी फिर ज्यादा बात नहीं की, और कुछ ही देर में वो घर वापस आ गया। वो घर आया तो उसे वहां हॉल में स्वीटी बैठी हुई दिखाई दी। उसके साथ आज 2-3 लोग और थे, जो कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि स्वीटी ज्यादातर घर पर अकेले ही दिखती है, और उसके साथ आदित्य ने आज तक उसके किसी भी दोस्त को नहीं देखा है। उसकी कोई फ्रेंड आज तक उनके घर नहीं आई है, और आदित्य तो पहले इन सब चीजों को लेकर इंटरेस्टेड भी नहीं रहता था, लेकिन अभी जब उसने चाचा के खिलाफ जाकर स्वीटी ने आदित्य का साइड लिया, तब से वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने लगा है, बिल्कुल अपनी सगी छोटी बहन की तरह। इसलिए आदित्य ने जब स्वीटी के साथ वहां पर 2-3 लोगों को और देखा, कुल मिलाकर वहां पर 4 लोग थे, 2 लड़के और स्वीटी को मिलाकर 2 लड़कियां। वो लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे और उनके सामने काफी सारा सामान फैला हुआ था, जिसमें कि कपड़े, कागज, कैंची, पेन, मार्कर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और काफी सारी चीजें थी। स्वीटी, ये लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? अंदर आते हुए आदित्य ने स्वीटी की तरफ देखकर पूछा, तो आदित्य की आवाज सुनकर स्वीटी एकदम ही हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और उसकी गोद में रखा हुआ थोड़ा बहुत सामान वहीं जमीन पर गिर गया। उसे शायद आदित्य के आने की उम्मीद नहीं थी और वो उसे दरवाजे से अंदर आते भी नहीं देख पाई, तो एकदम से खड़ी होती हुई बोली, हाँ हाँ भैया, वो ये मेरे दोस्त, सॉरी, मैंने इन्हें यहाँ पर लाने से पहले आपसे परमिशन नहीं ली, बट मैंने भाभी से कॉल करके पूछ लिया था और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वीटी को इस तरह से घबराते देख आदित्य उसकी तरफ आते हुए मुस्कुराकर बोला, अरे तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो स्वीटी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस मैं आज तक तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं देखा यहाँ पर तुम्हारे साथ आते हुए, तो बस इसीलिए पूछ लिया, वैसे इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी अपने फ्रेंड से मेरा? आदित्य को नए लोगों से मिलना जुलना इतना ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन अभी वो ट्राई कर रहा है जिससे कि अपनी आदत बदल पाए, इसलिए ही वो चुपचाप वहां से नहीं गया।
आदित्य की ये बात सुनकर स्वीटी ने राहत की सांस ली और बोली, हाँ हाँ भैया, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, अनिकेत, विनय और रेणुका, और वहाँ डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में हम साथ हैं, और अभी जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें हम चारों एक ही ग्रुप में हैं और काफ़ी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं। विनय और अनिकेत तो हॉस्टल में रहते हैं और पहले हम रेणुका के घर पर गए थे, लेकिन अभी रेणुका की बुआ आई हुई है तो वहाँ पर हमें ऐसे शांति नहीं मिल रही थी काम करने के लिए, तो मैंने सोचा आज हम सब यहाँ पर जाकर काम कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, मंथ के एंड में हमें सबमिट करना है और आज 18 तारीख हो गई है। स्वीटी ने एक ही सांस में आदित्य को पूरी बात बताई और स्वीटी की ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त भी आदित्य की तरफ ही देखने लगे और स्वीटी की पूरी बात सुनकर आदित्य ने कहा, अरे कोई बात नहीं स्वीटी, तेरा ही घर है और काम ही कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, और वैसे इन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं तूने, कोई नहीं मैं खुद ही मिल लेता हूँ। इतना बोलकर आदित्य आगे आया और उसने दोनों लड़कों की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मैं आदित्य सिंघानिया, स्वीटी का बड़ा भाई। दोनों लड़कों ने आदित्य से हाथ मिलाया और रेणुका ने बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कुछ भी नहीं बोली। तभी अनिकेत ने कहा, हेलो सर, थैंक्स आपने हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट करने की परमिशन दी। इस पर आदित्य ने फिर से मुस्कुराकर कहा, सर नहीं भैया बोल सकते हो, तुम लोग भी मुझे और स्वीटी गीता दी से बोलकर सबके लिए खाने को बोल दो, ऐसे ही भूखे प्यासे काम मत करो और मैं तुम्हारी भाभी को देखता हूँ जाकर वो कहाँ पर है। स्वीटी की तरफ देखते हुए आदित्य बोल तो उसकी बात का जवाब देते हुए स्वीटी ने कहा, अरे भाभी वो अभी तो यहाँ पर आई थी, उन्होंने हमारे लिए स्नैक्स भिजवाए थे और हम खा पी चुके हैं और भाभी ऊपर ही होगी, वो भी पढ़ाई कर रही है, कल उनका एग्जाम है ना। आदित्य को पहले से ही इस बारे में पता था इसलिए स्वीटी की बात सुनकर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया, हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा और फिर वहाँ से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
आदित्य के वहाँ से जाते ही सुनैना वापस अपने दोस्तों के साथ ही बैठ गई और आदित्य की तरफ देखते हुए उसकी सहेली रेणुका बोली, यार तेरे भैया तो कितने हैंडसम हैं, मैं तो देखती ही रह गई, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैगजीन के कवर पेज के मॉडल हों और बस अभी फोटोशूट से वापस आए हैं। अनिकेत ने भी रेणुका की बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार सच में तेरा भाई किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा और फेस तो एकदम मॉडल जैसा ही है, अपनी शो के लिए पूछ ले अपने भाई को ही, अगर वो राजी हो गए ना रैंप वॉक के लिए तो फिर हमारा ग्रुप ही जीत जाएगा, उन पर तो सारे कपड़े अच्छे लगेंगे ना। क्या यार तुम लोग भी, और रेणुका तू ना मेरे भाई पर से तो नज़रें हटा ले, वो पहले ही शादीशुदा है और भाभी को देखा था ना तूने, बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, और मेरे भाई कोई मॉडल नहीं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सिंघानिया इंडस्ट्रीज, नाम सुना होगा ना तुमने उसका, वो मिस्टीरियस सीईओ, वो कोई और नहीं मेरे भाई ही हैं, स्वीटी ने बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हुए कहा। तो इस पर विनय टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, शिट यार पहले बताना चाहिए था, तेरे भाई के साथ सेल्फी ले लेता मैं, फिर फोटो वायरल कर देता तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर ही बढ़ जाते। पागल हो क्या तुम सब, प्रोजेक्ट के लिए आए हो सीधे वही काम करो, और मेरे भाई को ये सब पसंद नहीं है, वो तो शायद आज अच्छे मूड में थे इसलिए तुम लोगों से मिल भी लिया, नहीं तो वो जल्दी किसी से मिलते भी नहीं हैं, इसलिए भूल जाओ ये सब कुछ और पहले प्रोजेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं तो फिर हमें यहाँ से भी हटा दिया जाएगा तो कोई जगह नहीं बचेगी, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा बर्ताव करो, स्वीटी ने अपने सारे दोस्तों को लगभग डांटते हुए कहा। तो उसकी डांट सुनकर उन लोगों ने फिर आगे कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ आदित्य कमरे में पहुँचा तो उसने देखा कि सुनैना वहाँ पर नहीं है, टेबल पर उसकी कुछ किताबें रखी हुई हैं लेकिन टेबल लैंप ऑफ है और कुर्सी भी अपनी जगह पर ही रखी हुई है। सुनैना को वहां पर ना देखकर आदित्य को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि वो पढ़ाई कर रही होगी और स्वीटी ने भी अभी उसे यही बताया था, तो उसने सुनैना का नाम लेते हुए आवाज लगाई, सोना सोना कहाँ हो तुम, और फिर इतना बोलते हुए वो वॉशरूम की तरफ पहुंचा और उसने धीरे से वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो उसे पता चला कि वॉशरूम का दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ है। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका लेकिन सुनैना वहां पर वॉशरूम में भी नहीं थी। आदित्य ने धीरे से दरवाज़ा वापस बंद किया और अपने आप से बोला, यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ चली गई है। इतना बोलते हुए वो रूम की बैल्कनी की तरफ आया, वैसे तो बैल्कनी कमरे से ही नजर आती है और वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन पता नहीं कि उम्मीद में आदित्य फिर भी वहाँ पर आया और सुनैना वहाँ पर भी नहीं थी, तो फिर इधर उधर देखते हुए उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वो सुनैना के नंबर डायल कर ही रहा था कि उसे उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ बैठ के साइड टेबल पर चार्जिंग पर लगा हुआ दिख गया। मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर ही है, कहाँ चली गई है, फ़ोन भी नहीं ले गई साथ। सुनैना का मोबाइल फ़ोन वही रूम में देखकर आदित्य बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हुए बोला और फिर रूम से बाहर निकल गया सुनैना को ढूंढने के लिए क्रमशः।